તારીખ 20/3/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 311 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 245
દર્શન પ્રશ્ન 311 હિન્દી પ્રથમે 173 પેજ બાહ્ય નિવૃત્તિ તો લેલી પરંતુ અંતર નિવૃત્તિ લેની ચાહીએ એસા કહેતે હૈ તો હમે અંતર નિવૃત્તિ કા અર્થ સમજાઈએ ક્યા પ્રશ્ન હૈ બાહ્ય નિવૃત્તિ મેને વ્યવસાય છે નિવૃત્તિ લેલી વ્યવસાય કો છોડ દિયા નોકરી કો છોડ દિયા કુછ ભી તો બહાર મેં તો નિવૃત્ત હો ગયે કોઈ પ્રવૃત્તિ નહીં સંસારિક પ્રવૃત્તિ નહીં રહી તો ઉતને સે હી કામ નહીં બનતા અંતર નિવૃત્તિ લેની ચાહીએ એસા જ્ઞાની કહેતે હૈ તો અંતર નિવૃત્તિ કા અર્થ ક્યા હૈ એસા પ્રશ્ન ક્યા હૈ સમાધાન દેતે હૈ કે અંતર નિવૃત્તિ અર્થાત અંતર મેં અનેક પ્રકાર કે વિકલ્પ ચક્ર મેં રૂપતા હો ઉસમેં સે સ્વયં છૂટકર બારંબાર ચૈતન્ય કે ઓર જાના સો અંતર નિવૃત્તિ હૈ ક્યા હૈ यहाँ बाह्य प्रवृत्ति में मन वचन काया का योग की प्रवृत्ति है शरीर से प्रवृत्ति करते हैं बोल करके प्रवृत्ति करते हैं और मन उसमें लगता है वचन के साथ और काया के शरीर की प्रवृत्ति के साथ वो बाहर में दिखता है और उसका कार्य भी बाहर में होता है तो उसको बाह्य प्रवृत्ति कहते हैं उस प्रवृत्ति से विरुद्ध को निवृत्त कहते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति प्रतिपक्ष में है तो ऐसी प्रवृत्ति छोड़ दिया संसार के कार्यों के तो निवृत्ति ले ली ऐसा कहने में आता है लेकिन जो जीव को कर्म बंधन है और कर्म से छूटना है ये दोनों में जीव के परिणाम का निमित्त पड़ता है जीव का परिणमन दो जाति का है एक स्वरूप के साथ लगता है उसको अंतर परिणमन कहते हैं आत्मस्वरूप को छोड़ करके इधर उधर कहीं भी हमारे परिणाम लगते हैं तो उसको आत्मा की प्रवृत्ति कहने में आता है जैसे यहाँ कहा कि अंतर निवृत्ति माने अंतर में अनेक प्रकार के विकल्प चक्र में रुकता हो वो नहीं रुकना उसमें से छूट करके नहीं रुक करके अपने चैतन्य स्वरूप की ओर जाना उसको कहते हैं अंतर निवृत्ति परिणमन तो चलता ही रहेगा परिणमन करना या परिणमन होना ये तो स्वभावगत वस्तु का स्वरूप है वस्तु स्वयं परिणमनशील है आत्मा भी और परमाणु भी जड़ चैतन्य दोनों तो परिणमन को बंद करने की बात नहीं है निवृत्ति लेना माने परिणमन बंद हो जाए वो बात नहीं है लेकिन परिणमन दूसरे पदार्थ के ओर लगता है उसको कहते हैं प्रवृत्ति और स्वरूप के ओर लगता है उसको कहते हैं निवृत्ति इस प्रकार से अंदर में प्रवृत्ति निवृत्ति का हिसाब है। तो कुछ एक लोग जो बाहर से निवृत्ति लेते हैं, व्यवसाय छोड़ दिया और धार्मिक क्षेत्र में आकर के बैठ गए, धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं, स्वाध्याय सत्संग पूजा भक्ति दया दान दर्शन यात्रा वगैरह, तो अपने स्वरूप को छोड़ करके जो भी प्रवृत्ति धार्मिक क्षेत्र में होती है वो भी बाह्य प्रवृत्ति है। वहां भी रुकना नहीं चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है कि वहां भी रुकना नहीं चाहिए, स्वरूप में लीन होना है और स्वरूप में लीन होने से स्वरूप की सुख शांति का अनुभव होता है। बाह्य प्रवृत्ति चाहे शुभ हो चाहे धार्मिक प्रवृत्ति हो, लेकिन उसमें भी मंद आकुलता तो है ही। सांसारिक प्रवृत्ति के मुकाबले में उसमें थोड़ी शांति है ऐसा लगेगा, सांसारिक प्रवृत्ति में विषय कषाय ज्यादा है तो तीव्र आकुलता होगी, अशांति लगेगी, और धार्मिक प्रवृत्ति में शांति लगेगी, लेकिन वो मानसिक शांति है, आत्मिक शांति नहीं है। आत्मा की शांति आत्मा में लीन होने से ही उत्पन्न होती है, आत्मा से बाहर निकल करके शुभ प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति करो तो भी अशांति ही अशांति है, ये कहने का आशय है। फिर से अंतर निवृत्ति अर्थात अंतर में अनेक प्रकार के विकल्प चक्र में रुकना, विकल्प चलना, कभी इस प्रवृत्ति का कभी उस प्रवृत्ति का, कभी ग्रंथ पढ़ने का कभी पूजा करने का कभी जप करने का कभी व्रत करने का, कभी कोई न कोई विकल्प चलता है, वो विकल्प आकुलताजनक है, उसमें आकुलता होती है और उसमें अवश्य अवश्य थकान आती है। आप ग्रंथ पढ़ते पढ़ते भी थक जाओगे, पूजा करते करते भी थक जाओगे, भक्ति करते करते भी थक जाओगे। इसका मतलब क्या है कि यह प्रवृत्ति जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, स्वभाव प्रवृत्ति से कभी थकान नहीं होती, जैसे शरीर का स्वभाव देखें तो श्वासोश्वास का चलना उसका प्राण है, कोई थकता है क्या? श्वास लेते लेते कोई थक जाता है क्या? कि नहीं, नींद में भी लेगा, उसमें तो श्वास को रोकने से थकान आएगी, श्वास के चलने से थकान नहीं आएगी, लेकिन चलते चलते हम पैर थक जाएंगे हमारे, सोते सोते हमारा शरीर थक जाएगा, बैठे बैठे भी हम थक जाएंगे, क्योंकि वो स्वभावगत प्रवृत्ति नहीं है शरीर की। स्वभाव प्रवृत्ति में थकान नहीं है, तो जिसमें थकान है वो स्वभाव प्रवृत्ति नहीं है। ऐसे शास्त्र स्वाध्याय पूजा भक्ति व्रत नियम यात्रा कुछ भी करो थक जाओगे आप। हाँ, आकुलता के कारण से ही थकान आती है, ऐसे कसाई की मंदता होती है और सांसारिक प्रवृत्ति की बराबरी में उसमें शांति दिखती है, लेकिन उसमें भी आकुलता है। इसका सबूत क्या है? इसका वो सबूत है कि हम थक जाते हैं, वो कार्य करते करते हमारे परिणाम थक जाते हैं, तो वहाँ आकुलता है ही। जबकि आत्म शांति में जो है वो थकान नहीं लगती। हमारे अरिहंत सिद्ध परमात्मा सादी अनंत आत्म शांति में विराजमान रहते हैं अनंत काल तक। वहां से वो निकलते नहीं, छूटते नहीं। यही कारण है इसका कि वो स्वाभाविक शांति में विराजमान हो गए। और जो भी साधक है वो भी आत्म शांति में जाता है तो उसको यहां से बाहर निकलने का गमता नहीं है। अयोग्यता के कारण से बाहर निकल जाते हैं, निकलना नहीं चाहते, रहना चाहते हैं। तो वो इसको कहते हैं अंतर्निवृत्ति। अनेक प्रकार के जंजाल में फंसता है, उसे चैतन्य की ओर मुड़कर चैतन्य संबंधी विचार करना, यह मैं हूं ऐसे अपना ग्रहण करना। दो बात लिया है। अनेक प्रकार के जंजाल में फंसता है, उस जंजाल कहते हैं आत्मा को छोड़ करके चैतन्य को छोड़ करके इधर उधर परिणाम जाना, ये जंजाल है। उसमें जीव फंसता हो तो वहां से छूट करके अपने स्वरूप की ओर मुड़कर दिशा बदल देना। दो ही दिशा है परिणाम को, एक बाह्य और एक अंदर की। बाह्य दिशा से मुड़ करके परिणाम को अपने स्वरूप की ओर लगाना। पहले विचार आएगा और आगे जा करके अपने स्वरूप को ग्रहण करना, ग्रहण करना, अनुभव करना, लीन होना, वेदन करना, ये सब एक अर्थ है, एक ही बात है। तो सुख शांति और आनंद का अनुभव होएगा कि जहां से बाहर निकलना चाहेंगे नहीं। इसलिए अकेली बाह्य प्रवृत्ति छोड़ दिया तो कुछ काम हो गया, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग दीक्षा भी लेते हैं प्रवृत्ति छोड़ करके। कुछ लोग दीक्षा नहीं लेते हैं तो प्रवृत्ति नहीं करते, और कुछ लोग तो ग्रस्त की परिस्थिति संयोग को छोड़ करके दीक्षा भी ले लेते हैं। लेकिन परिणाम की प्रवृत्ति क्या रही? परिणाम की दिशा अगर बाहर में ही रही, अंदर में नहीं हुई, अपने स्वरूप के साथ नहीं लगी, तो अभी भी बाह्य प्रवृत्ति ही परिणाम की है, निवृत्ति नहीं लिया। परिणामों ने निवृत्ति नहीं लिया। अंतर प्रवृत्ति करने के लिए सांसारिक बाह्य प्रवृत्ति का कोई त्याग करे, ठीक बात है। लेकिन सांसारिक प्रवृत्ति का प्रकार है वो अशुभ भाव का है, और धार्मिक प्रवृत्ति का जो परिणाम का प्रकार है वो शुभ भाव है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम बाह्य प्रवृत्ति रूप है, पराश्रय भी है और बाह्य प्रवृत्ति रूप है। अपना स्वभाव तो स्वरूप में लीन रहने का ही है, बाहर निकलने का स्वभाव नहीं है। परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी आत्मा है। क्या आत्मा पूर्ण रूपेण परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी है? वो कैसे जाना जाए? कि अंतरंग परिणति से, ज्ञान का अंतरंग जो है वो अपने आप को वेदता है। ज्ञान का अंतरंग है जिसमें ज्ञान वेदन है, कल जो विषय चला ना, ज्ञान ज्ञान से वेदन करे, ज्ञान से ज्ञान का पहचान होता है। तो वो पहचान किसने है कि परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभाव का पहचान होता है। तो देखो तो अनादि अनंत हमारे में ज्ञान ज्ञान का वेदन कर रहा है, ये इसकी अंतर्मुखता है। क्योंकि वो तो ज्ञान सामान्य तो बहिर्मुख होता ही नहीं, वेदक भी वही है यानी अनुभव भी वही करता है, और अनुभव में आता है, खुद ही अनुभव में आता है। वेद्य वेदन करने योग्य वो भी स्वयं है, वेद्य वेदक दोनों एक ही पर्याय है, एक ही भाव है। तो वहां बहिर्मुखता कैसे होगी, तो वहां बहिर्मुखता नहीं है। तो अनादि अनंत ऐसी एक ज्ञान धारा जीव के ज्ञान के अंतरंग में हमेशा हमेशा सबों को चलती है। अगर वो मालूम पड़ती है, ज्ञान विशेष उपयोग जब मुड़ता है अंदर में तब मालूम पड़ती है, तो पता चलता है कि अरे मेरा स्वभाव ही परिपूर्ण अंतर्मुख रहने का ही है, मैं तो परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभाव ही हूं, बाहर निकलना यही मेरे लिए आपत्ति है। सुगानी जी ने क्या कहा कि उपयोग बाहर निकला कि जम का दूत समझो, क्यों कि उसमें आत्मा के आनंद और शांति, जो आत्मा के प्राण है, आत्मा की शांति और आत्मा का आनंद वो इसका प्राण है, उसका मृत्यु होती है, उसका खून होता है, तब अशांति पैदा होती है। यानी शांति जल जाती है और अशांति की आग उसमें से निकलती है। तो उपयोग बाहर निकलते ही ये बात चालू हो जाती है। इसलिए कोई भी ज्ञानी मुनि नहीं चाहते कि हमारा उपयोग बाहर निकले, अयोग्यतावश निकल जाता है, अनिवार्य रूप से निकल जाता है, वो दूसरी बात है, वो अपने अभिप्राय विरुद्ध है, लेकिन वो चाहते नहीं है। एक सेकंड के लिए भी वो परिस्थिति को वो नहीं चाहते, अंतर्मुख रहने का ही अभिप्राय है, बाहर निकलने का अभिप्राय है ही नहीं। उपदेश तो देते हैं, ज्ञानी मुनि है, उपदेश तो देते हैं, और उपदेश देते हैं तो उपयोग बाहर निकलता है। फिर क्यों उपदेश देते हैं, ये सवाल आता है कि अंदर में रहा नहीं जा सकता है तो जो उपयोग बाहर निकलता है उसके द्वारा भी वो अंतर्मुख रहने का उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं, अंतर्मुख होने का और अंतर्मुख रहने का ही उपदेश देते हैं। और उस उपदेश देते देते वो अंतर्मुख रहने की अपनी भावना को और मजबूत करते हैं, तीव्र करते हैं, और उसी का रस लेते हैं। देखो बाह्य उपयोग में अंतर्मुख उपयोग का ही रस लेते हैं, सुगानी जी सोनगढ़ आते थे तो एक दफे ऐसी बात करते थे, सब बात तो याद नहीं है तो लिखी नहीं जाए, कभी कभी बातें याद आती हैं। सोनगढ़ में रहने का बहुत मन करता है इसलिए कि बाहर में भी गुरुदेव परमात्मा 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 को ही सुनाते हैं, हमारे स्वरूप को ही सुनाते हैं, और हम हमारे कमरे में जाते हैं तो हम हमारे परमात्मा के साथ हमारे परिणाम लगाने का काम करते हैं। तो यहाँ तो भीतर में भी परमात्मा, बाहर में भी परमात्मा है, यहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है। तो भी ऐसी ऐसी बात वो करते थे, ऐसे ज्ञानियों का और मुनियों का जो उपदेश है वो जीव को अंतर्मुख कराने का ही उपदेश होता है, और खुद ही वो उपदेश के दौरान अपनी परिणति को प्रगाढ़ करते हैं, अपने अंतर्मुखी रस को वो घूंटते हैं और घूंटते घूंटते उसकी अवगाढ़ता को प्राप्त करते हैं। समय सार की टीका करते हुए प्रारंभ में अमृतचंद्र आचार्य ने ये कहा कि इस ग्रंथ की टीका करते हुए मेरी परिणति जो अनादि से कलमाशित है माने मलिन है उसकी विशुद्धि हो जाओ। तो गुरुदेव उसकी चर्चा करते थे उस विषय पे कि टीका करने में तो महाराज आपका उपयोग बाहर है, टीका करने में तो उपयोग बाहर आएगा, तो उपयोग बाहर आएगा तो कैसे भी शुद्धि होगी। लेकिन यहाँ ऐसी बात, अकेली ऐसी बात नहीं है, इस परमागम की टीका करते करते वो अपना आत्म स्वभाव का रस प्रगाढ़ करेंगे, अपनी परिणति को मजबूत करेंगे और उस तरह से अपनी परिणति की विशुद्धि होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानी बाहर में तो शुभ प्रवृत्ति करते हुए दिखते हैं कि वो शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, अंतरंग में दूसरी बात होती है। बाहर में ऐसा प्रवृत्ति दिखती है, अंतरंग में दूसरी बात होती है, क्योंकि वो दूसरे विषय को तो लेते नहीं, फालतू की बात तो करते नहीं। स्वाध्याय शास्त्र में और पूजा में भी वही बात है कि जिसमें वो वितराट को मुख्य करके अंतरंग में अपना काम करते रहे। तो बाहर में शुभ प्रवृत्ति है, अंतरंग में आत्मशुद्धि की प्रवृत्ति उनको चलती है। अंतर प्रवृत्ति शुद्धि की बढ़ाने के लिए वो बहाना है, शास्त्र पढ़ना या लिखना या टीका करना या पूजा करना या कुछ भी, लेकिन उस बहाने के नीचे वो अंदर में कार्य कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि इसकी टीका करते हुए हमारी परिणति की विशुद्धता हो जा, ऐसी बात है। और वो टीका करते हैं तो उसके निमित्त से अन्य जीवों का कल्याण, वो शास्त्र लिखते हैं तो अन्य जीवों का कल्याण हो जाता है। जिसके वाणी में बाह्य परिणाम के निमित्त से होने वाली वाणी है, परिणाम तो जीव के है, वाणी जड़ की है, वाणी है वो जड़ का परमाणु का परिणमन है, उसमें भी दूसरे का आत्मकल्याण का निमित्त तत्व है, क्या फिर से वाणी जो है परमाणु की पर्याय है, लेकिन ज्ञानी की वाणी है तो उसमें दूसरे जीव का आत्मकल्याण होवे ऐसा निमित्त तत्व है। वो वाणी विकल्प पूर्वक चली है जो बाह्य परिणमन है, तो वाणी तो विकल्प का बाय प्रोडक्ट है और आत्मा की जो साधना है वो अंतर परिणति है। वो अंतर परिणति को बताने वाली वाणी है, ये विकल्प है, विकल्प और वाणी तो अंतर परिणति को बताने वाली है, समझाने वाली है। वो वाणी में उतना निमित्त है तो अंतर परिणति में कितना होगा निमित्त, और अंतर परिणति जिसके साथ लगी हुई है, खींची हुई है, खिंचाव है उसको, ऐसा जो निज परमात्मा, उसकी ताकत कितनी। ताकत का नाप निकल सकता है कि कितनी ताकत है उसमें। तो श्रीमद जी ने, कृपालु देव ने ये कहा कि जिस मुमुक्षु जीव को ज्ञानी की अंतर परिणति का दर्शन होता है, उसको प्रथम सम्यक्त हो गया, प्रथम संकित उसको हुआ, परमार्थ सम्यक दर्शन का वो प्रत्यक्ष कारण हमको देखने में आता है। कारण गणी प्रत्यक्ष, परमार्थ सम्यक दर्शन का वो प्रत्यक्ष कारण है ऐसा हमको दिखने में आता है। क्यों? कि ये अंतर परिणति स्वरूपाकार है, स्वरूप सदृश है, जैसा निज परमात्मा भीतर में है वैसा ही रूप उसने धारण कर लिया है। तो उस परिणति के दौरान निज परमात्मा का दर्शन हो गया, और निज परमात्मा का दर्शन को ही सम्यक दर्शन बोलने में आया है। तो हुआ कि नहीं हुआ प्रत्यक्ष? कोई उटपटांग बात नहीं है, एकदम साफ स्पष्ट ठोस बात है। इसलिए उसको वहां संकेत बताया है, प्रथम संकेत बताया है, और उसकी ताकत उतनी है निज परमात्मा की कि उसमें उसके सम्मुख होने वाले परिणाम के अंश है वो शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, स्वरूपाकार होकर के अपनी सिद्ध दशा के ओर गतिमान होते हैं। उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने वाले जो विकल्प है कि जिसमें परमात्मा का ही भजन है, विकल्प में क्या है? परमात्मा का ही भजन है। वो विकल्प दूसरे लोगों को समझ में आता है वाणी के दौरान, क्योंकि विकल्प पूर्वक वाणी चलती है। तो उस विकल्प और विकल्प के निमित्त से होने वाली वाणी, उसमें भी दूसरे का कल्याण होने का निमित्तत्व है। उसमें से नए नए ज्ञानी पैदा हो जाते हैं। ऐसी एक घटना इस विश्व में अनादि से चलती आ रही है और अनंत काल चलती रहेगी। सर्व मंगल, उसकी आत्मा भी मंगल, उसकी साधना भी मंगल, उसका उपदेश भी मंगल, और उसकी वाणी भी मंगल, सर्व मंगल है। इस कारण करुणा है, वो तो पवित्र है ही। तो उस वाणी को भी लोग पूजते हैं, शास्त्र की पूजा जिसको बोलते हैं, वाणी को भी पूजते हैं, वो पूजनीय है, उपकारी है ना, इसलिए पूजनीय है। अगर परमाणु की पर्याय भी जीव के कल्याण में निमित्त होती है तो उसकी पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई नुकसान नहीं है, ऐसी बात है। एक दृष्टांत गुरुदेव देते थे कि हीरा तो हीरा है, लेकिन जब हीरा को बनाते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है, घिसते हैं उसको, तब उसको पहलू पहलू होते हैं, उसमें जो रज रज बनती है, घिसते घिसते कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो निकलते हैं उसमें से, तभी तो बराबर उसके पहलू होते हैं। तो वो रज भी है, वो भी कैरेट और सेंट में बेची जाती है, वो फेंके नहीं जाते, फेंकते नहीं उसको, उसको इकट्ठी कर लेते हैं, स्वीपिंग करके उसको इकट्ठी करते हैं, और वो भी ग्राम में नहीं बिकती, तोड़ा में नहीं बिकती, वो भी कैरेट और सेंट में बिकती है, क्योंकि हीरा की रज है, वो भी इतनी मूल्यवान है, निकम चीज नहीं है। वैसे आत्मा चैतन्य हीरा है, वो चैतन्य की साधना है, उसके पहलू है, और रज भी मूल्यवान है। ऐसे वाणी जो है वो रज है, परमाणु की पर्याय, लेकिन इसका भी मूल्य बहुत है, कि वहां से दूसरे ज्ञानी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या अनेक प्रकार में के जंजाल में जीव फंसता हो, बाह्य पदार्थ में विकल्प में जंजाल है, उसे चैतन्य की ओर मुड़कर चैतन्य संबंधी विचार करना, पहले विचार दूसरे पदार्थ का विचार करता था, अभी चैतन्य की ओर विचार करना, यह मैं हूं ऐसा ग्रहण करना, और अपने स्वरूप को अनुभव करना। विकल्प जाल की प्रवृत्ति बारंबार आड़े आने से चैतन्य के विचार गौण हो जाते हैं, इसलिए विकल्प जाल की प्रवृत्तियां कम करके अपनी ओर का अभ्यास बढ़ाएं, वह अंतर निवृत्ति है। विकल्प जाल की प्रवृत्ति बारंबार आड़े आने से, देखो क्या कहते हैं, स्वरूप को छोड़ करके जो भी विचार विकल्प है वो अपने निज कार्य में आड़े आने वाले परिणाम है या जंजाल है। अब यहां प्रश्न ये उठेगा कि गृहस्थी को तो कई प्रकार की जिम्मेवारी होती है अपने संसार के कार्यों की, भले निवृत्ति ले लिया हो, कुछ खर्चा निकले, ऐसी संपत्ति आ जाने से निवृत्ति ले लिया हो, व्यवसाय नौकरी छोड़ दिया हो, लेकिन और भी तो कोई जिम्मेवारी होती है, घर के कार्यों की, समाज के कार्यों की, कुटुंब के कार्यों की, बच्चे लोगों की, तो इसके विचार विकल्प तो चलेंगे। और यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी कहते हैं कि ये जंजाल है और वो आड़े आता है, तो क्या दीक्षा ले ले, क्या क्या ग्रह त्याग कर दे, क्या क्या करे, ये बात बीच में सामने आएगी। इसको कहते हैं कि वो सब प्रवृत्ति हम गृहस्थी हैं ऐसा मान करके हम करते हैं मुख्य रूप से। हमारा ये प्रश्न है कि आप पहले आत्मा हैं या पहले गृहस्थी हैं। जैसे आपके पास अनेक कार्य हैं, तो आप जो आवश्यक लगता है उस कार्य को प्रायोरिटी देते हैं, बाकी के कार्य पीछे करते हैं या गौण रूप से करते हैं या साइड बिजनेस कर लेते हैं। तो संसार की प्रवृत्ति जो है, जिसको जिम्मेवारियां बोलने में आती है, वो उतनी मुख्यता उसकी नहीं होनी चाहिए कि हमारा आत्म कल्याण की अंतर प्रवृत्ति गौण हो जाए। मुमुक्षु की भूमिका त्याग की नहीं है, मुख्य गौण करने की है। तो आप आत्म कल्याण के परिणाम की मुख्यता में रहें, सांसारिक प्रवृत्ति की गौणता है में रहें, उसकी गौणता करते रहिए। गौण रूप से ये चल सकता है और मुख्य रूप से भी वो चल सकता है। मुख्य रूप से चलाएंगे तो आत्म कल्याण छूट जाएगा, मनुष्य भाव निकल जाएगा वैसे ही, और आत्मा अधोगति में चला जाएगा। ये जो आत्म कल्याण का विषय है, ये दीर्घ दृष्टि का विषय है, विचारवान जीव का विषय है। मुमुक्षु जीव माने विचारवान जीव, जिसकी दीर्घ दृष्टि उतनी है कि ये 150 साल का मनुष्य जीवन वही मेरा जीवन नहीं है, बाद में भी मुझे कहीं भी रहना होगा तो मेरी सुख शांति बनी रहे ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है तो मुझे कर लेना चाहिए। जैसे हम युवानी में बुढ़ापे की तैयारी कर लेते हैं कि हमारे शरीर प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा तो भी हमारी आवश्यकताएं बनी रहे, इतनी व्यवस्था हमको अभी भी कर लेनी चाहिए, तो बैठे बैठे भी हम हमारा जीवन गुजार सके, कोई तकलीफ नहीं पाए। तो वो बात तो हमारी रही 150 साल के विचार करने की, और वो विचार तो हम बराबर करते हैं। इस प्रकरण में, इस क्षेत्र में उसको दीर्घ दृष्टि नहीं कहते हैं, उसको शॉर्ट साइट कहते हैं, छोटी टूकी दृष्टि कहते हैं। जब आत्मा शाश्वत है, भव भवांतर करते संसार में परिभ्रमण करती है, तो आगे आने वाले जो हमारे भविष्य काल है उसमें भी हमारी सुख शांति की व्यवस्था हम इधर बना सकते हैं और हमको बना लेनी चाहिए, ऐसी दीर्घ दृष्टि का एक विषय है। तो इसलिए वर्तमान को गौण करना पड़ता है, और वो भी संसार में हम करते हैं। हमने एक परिवार में देखा था, डॉक्टर फैमिली था, डॉक्टर की बहुत अच्छी कमाई थी, अभी भी है, ओपेरा हाउस पर एक मैटरनिटी होम है। तो डॉक्टर बहुत नामी डॉक्टर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसका इकलौता लड़का था, वो भी डॉक्टर हुआ। उसने पढ़ते पढ़ते एक लड़के के साथ संबंध कर लिया और उसके साथ शादी भी कर लिया। लड़की वो समझी कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो अपने को तो सभी प्रकार की अनुकूलता बनी रहेगी। अब लड़का पढ़ाई पूरा करके प्रैक्टिस में लग गया अपने पिताजी के क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, और उसको कमाई का उतना धुन चढ़े कि वो घर में रहने का ही उसका कम हो गया, क्योंकि मैटरनिटी का हॉस्पिटल चलाने वाले को कोई ठिकाना नहीं रहता, उसको तो 24 घंटा जैसे सर्विस देनी पड़े वो बात हो जाती है, उसमें तो कोई टाइम का तो कोई नियम तो होता ही नहीं कि कभी किसको डिलीवरी हो कभी किसको डिलीवरी हुए। तो आधी रात को भी भगने लगा, 1 बजे भी भगे, 3 बजे भी भगे, फिर 5 बजे भी भगे, फिर 7 बजे भी भगे। एक दिन हम वहाँ थे तो भाई आई वो लड़की, थोड़ी नाराज थे कि आप तो पैसे के पीछे लगे हो, पर लगना चाहिए। देखो पैसे से हमारे पास इम्पोर्टेड गाड़ी है, हम लोग बम्बे में फियाट चलाते हैं, हम इम्पोर्टेड गाड़ी चलाते हैं, हाँ, और पैसे हैं इसलिए हमारे पास अच्छे फ्लैट हैं, सब सुविधा के साधन हैं। लेकिन साधन तो है, लेकिन इसका उपभोग करने का समय कहाँ है आपको? और मेरे मेरे को तो आपकी कंपनी चाहिए, आप मुझे कंपनी भी नहीं दे पा रहे हैं, फिरना घूमना जाना आना कोई रहता नहीं। 3 घंटा थिएटर में पिक्चर देखने को जाए या डिलीवरी के टाइम हो जाए, क्या करें? तो जहाँ आना जाना उसका तो पाबंदी इतनी हो गई थी, वो परेशान हो गई। अब वो लड़का बोलता है कि देखो अभी मेरा युवानी का पीरियड है, मैं जितनी ज्यादा कमाई करूंगा उतना मेरे बुढ़ापे में काम में आ जाएगी बात। तो जो भविष्य के अच्छापन देखता है वो वर्तमान को भोग उसका सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसे अगर हमें आने वाले भविष्य के भवों को सुधार करना है तो वर्तमान का सेक्रीफाइस करना होगा हमें। नहीं, उसमें ऐसा है, बात वो होता है कि देखो आपको उपदेश क्या मिलेगा कि खान पीन में नीरस हो जाओ, देखो हैं ऐशाराम में नीरस हो जाओ, हैं पंचेंद्री के विषय में नीरस हो जाओ। तो आप ये कहेंगे कि हमको तो पूर्व पुण्य के उद्देश्य सब अच्छे अच्छे पंचेंद्री के भोग उपभोग अच्छे मिल रहे हैं, क्यों हो जाए हम? तो ज्ञानी कहेंगे कि भविष्य का अगर आपको ठीक करना है तो वर्तमान में है, आपको ऐसा करना होगा। तो उसको लगता है कि मेरा सैक्रिफाइस हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि संपत्ति जो है, तो संपत्ति में अपनत्व छोड़ दो और सन्मार्ग में लगा दो, सैक्रिफाइस हुआ क्या नहीं हुआ, समर्पण हुआ क्या नहीं हुआ? तो वो बात कुछ एक संसारिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं लगती। क्या है? संसार के कुछ एक दृष्टिकोण ऐसे है कि उसमें वो बात सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। जैसे ये जिम्मेवारियां हैं, क्या बच्चे पे ध्यान नहीं देते, उसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ठीक तरह से सीरियसली उठाते नहीं, यानी कुछ उदासीनता रहती है आपकी, हाँ, तो वो कहाँ तक ठीक है? ध्यान देना चाहिए बिजनेस में, तो ध्यान देना चाहिए इसमें, तो ध्यान देना चाहिए, बात आती है कि नहीं सामने? सब प्रकार की बातें आएंगी सामने। वर्तमान को गौण किए बिना भविष्य का व्यवस्था बैठने वाली संसार में भी नहीं है और परमार्थ में भी नहीं है। कहने का मतलब वो है, है? वो तो ऐसा है कि संसार के लोग ऐसे मानने वाले नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया और काम बिगड़ गया, आपकी फैक्ट्री में आपका ध्यान नहीं रहा और काम बिगड़ा तो क्या कहेंगे? देखो ध्यान नहीं दिया तो काम बिगड़ा, अगर ध्यान देते तो नहीं बिगड़ता, वो तो ऐसे ही देखेंगे। चतुर से चतुर लोग भी पायमाल हो जाते हैं, देवाला निकालते हैं, ऐसा नहीं। वो तो प्रारब्ध का ही खेल है, इसमें किसी की चतुराई काम आती नहीं है। फिर भी जीव भविष्य को नहीं सुधारता, भविष्य को भी बिगाड़ता है, वर्तमान को भी बिगाड़ता है। पारमार्थिक दृष्टिकोण में तो वो है कि भविष्य को भी बिगाड़ता है और वर्तमान को भी। वर्तमान को कैसे बिगाड़ता है कि सावधानी करके आकुलता ज्यादा करता है, तो आकुलता में दुखी होता है। और परमार्थ मार्ग में तो वर्तमान में भी शांति और भविष्य में भी शांति, लेकिन दृष्टिकोण बदले तब तो। ये उल्टा दृष्टिकोण में वो बात है, उल्टा दृष्टिकोण में दूसरी बात है, ऐसी बात है। इसलिए कहते हैं कि विकल्प जाल की प्रवृत्ति बार बार आड़े आने से चैतन्य के विचार गौण हो जाते हैं, तो आत्मकार्य गौण हो जाता है और संसार के विकल्प जाल मुख्य हो जाते हैं। इसलिए विकल्प जाल की प्रवृत्तियां कम करके अपनी ओर का अभ्यास मैंने प्रैक्टिस बढ़ाए हैं, वह अंतर्निवृत्ति है। अंदर में प्रवृत्ति बढ़ाना वो अंतर्निवृत्ति है, ऐसी बात है। और बाह्य पदार्थों के विकल्प जाल को कम करना है या गौण करना है। गौण करो या मुख्य करो, होगा प्रारब्ध अनुसार। क्या होगा? प्रारब्ध अनुसार ही होगा, उसमें किसी की चलती नहीं है। एक साथ दो बच्चे एक ही सेकंड में जन्म लेते हैं, एक राजमहल में और एक झोपड़ी में। दोनों की कुंडली एक सी बनती है कुंडली, क्योंकि उसके ग्रह योग ऐसे ही है। लेकिन एक को, एक का जन्मदिन धामधूम से मनाया जाता है, दूसरे को पीने के लिए दूध नहीं मिलता। उसकी माँ बीमार हो जाती है तो उसका माँ का दूध नहीं मिलता, और पैसे नहीं है तो भी दूसरे का गाय का दूध नहीं मिलता। वही बच्चा है, नाम एक सा है, नाम भी हाँ एक राशि हो, एक नाम हो, लेकिन प्रारब्ध अलग अलग होता है। तो वहां पुरुषार्थ तो है ही नहीं। जो राजा के वहां जन्म लिया राजमहल में, उसका क्या पुरुषार्थ है? उस पुरुषार्थ की कोई हालत होती है क्या? तो परिस्थिति है ही नहीं, वो पोजीशन ही नहीं है, कुछ बात नहीं है। उसको भान ही नहीं है कि मैं कहाँ पड़ा हूं, कहाँ सोया हूं, वही भान नहीं है। तो वही परिस्थिति जो बचपन में है वही सारी जिंदगी में है प्रारब्ध अनुसार। लेकिन हमारी कर्ता बुद्धि उतनी प्रबल होती है कि हम करते हैं तो होता है, नहीं करते हैं तो नहीं होता है, और वही हमको दुख देती है। वो आकुलता, अनंती आकुलता उसमें पैदा होती है। यथार्थ निवृत्ति तो वह है कि जब ज्ञायक न्यायिक रूप से परिणमित हो जाए, आत्मा आत्मा रूप परिणमन कर ले, न्यायिक न्यायिक रूप परिणमन कर ले, चैतन्य चैतन्य रूप परिणमन कर ले, तभी बाहर में बाहर से निवृत्त हो गया, और वही यथार्थ निवृत्ति है, वही अंतरंग निवृत्ति है। हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी के बहुत से पत्र में वो बात चली है। वो बंबई में बहुत बड़ा पैमाने में व्यवसाय करते थे, तो वो व्यवसाय है वो औपाधिक कार्य है, लेकिन गौण रूप से वो चलता था, इसलिए वो लिखते हैं कि उपाधि में समाधि है, समाधि माने आत्म शांति। हम आत्म शांति में रहते हैं, लोग समझते हैं कि गद्दी पे बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत उपाधियां हैं उनको, लेकिन हमको ये सब बातें गौण हैं। हम हमारे आत्म शांति में से मुख्य रूप से वहीं रह करके जो चलता है वो बाहर में चलता है, हमारी बात अंदर में कोई दूसरी ही है, ऐसी बात है। ज्ञान दशा में ऐसा होता है। ज्ञानी का परिणमन है, भविष्य की एक क्षण की भी, आने वाली भविष्य की प्रथम क्षण की भी वो चिंता नहीं करते। लंबी चौड़ी तो सवाल ही नहीं। ये ज्ञान दशा का सिम्टम है, सबूत है, लक्षण है। और अज्ञानी का वो लक्षण है, अज्ञान दशा का वो लक्षण है कि वो भविष्य की चिंता के बिना रह सकता नहीं, नहीं चाहे तो भी हो जाता है उसको, तो वो नहीं चाहे तो भी उसको भविष्य की चिंता हो ही जाएगी, फिर भी वो चिंता कुछ काम में आने वाली नहीं है, वो तो होने वाला है, प्रारब्ध अनुसार वही होके रहेगा, दूसरा कुछ उसमें होने वाला नहीं है। अनहोनी कभू न होती, नहीं होने वाला कभी होता ही नहीं, काहे हो तो अधीरा, एक पद है, अनहोनी कभी कभू न होती, काहे हो तो अधीरा। तो अधीरा क्यों होता है, नहीं होने वाला तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, बनना से तो बनना नहीं, इसलिए यथार्थ निवृत्ति तो वह है कि जब नायक नायक स्वरूप से परिणमित हो जाए, अंतर अभ्यास से स्वरूप रूप परिणमन हो जाए, तो वो परिणमन होकर के हमारे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा सादि अनंत परमानंद में विराजमान है। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है, और प्रैक्टिस से ये हो सकता है। उस प्रैक्टिस को ज्ञान दशा कहने में आती है, साधक दशा कहने में आती है। इस तरह से ये 311 प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। आशय वो है, इस प्रश्न का जो आशय है वो ऐसा है कि कुछ लोग संसार की बाह्य निवृत्ति, कुछ लोग संसार की बाह्य प्रवृत्ति छोड़ करके निवृत्ति लेकर के संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, परंतु अंदर में वर्तमान और भविष्य के संयोग की चिंता के परिणाम चलते रहते हैं, तो बाह्य निवृत्ति की कोई सफलता नहीं होती। अपने स्वरूप में ही परिणाम लगे, आत्मा के सुख शांति के का प्रयोजन सधे यही अंतर निवृत्ति है। उस प्रयोजन से बाह्य प्रवृत्ति के विकल्प से छूटने के लिए बाहर में निवृत्ति लेना ठीक है, उपकारी भी है, परंतु अंतर निवृत्ति बिना के बाह्य निवृत्ति से कोई फायदा नहीं है।